ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पात्र रविवार 21 मई 2023 के लिए है। विषय: आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ करंथियों। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? उत्तरदायी अध्ययन करंथियों तसलिंकियों। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रखो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। भजन संहिता। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का उद्धार करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंगेगा। सुन, इसराइल का रक्षक ना ऊंगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आद है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। दानियल। यहूदा के राजा योयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबल के राजा नबूकदनजर ने यरूशलम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपिंस को आज्ञा दी कि इसराइल राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रावीण और ज्ञान में निपुण और वरदान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोष होता रहे, तब उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हननिया, मिसाइल और अजरिया नाम यहूदी थे, परंतु दानियल ने ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो जाए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसे खोजों के प्रधान ने दानियल, हननिया, मिसाइल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दे दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुँह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। यशाया। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो? वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर के नाम पर आशा लगाए रखे। यशाया, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तिरपत और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सौते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मत्ती, और यीशु ने पतरस के घर आकर उसकी सास को ज्वार में पड़ी देखा और उसने उसका हाथ छुआ तो उसका ज्वार उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संदेह हुई तो वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को ठीक किया। मत्ती, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसलों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो ना तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी विभाओं में से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए परमेश्वर जब मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे एलिप विश्वासियों, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धाम की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मन के बिना शरीर को बचाया नहीं जा सकता। क्या आप कहते हैं कि समय अभी तक नहीं आया है जिसमें आत्मा को पर्याप्त रूप से पहचानना और शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए? यीशु को याद करिए, जिन्होंने लगभग 19 सदियों पहले आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन किया था और कहा था, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, और ये भी कहा, परंतु वो समय आता है वरुण अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धारण का दिन है, ये पौलुस ने कहा। मंदर, शरीर, जीवन, पदार्थ और बुद्धि का विचार, सत्य की अधिरचना, प्रेम का तीर्थ। सवाल, शरीर और आत्मा क्या है? उत्तर, पहचान आत्मा का प्रतिबिंब है, जीवन सिद्धांत प्रेम के विभेद रूपों में प्रतिबिंब है, आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमता है जो व्यक्तिगत है लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। भारतीयों ने अंतर्निहित वास्तविकता की कुछ झलकियां पकड़ी जब उन्होंने निश्चित सुंदर झील को द ग्रेट स्पिरिट की मुस्कान कहा। मनुष्य से अलग जो आत्मा को व्यक्त करता है, आत्मा एक अस्तित्वहीन होगा। मनुष्य आत्मा से तलाकशुदा अपना अस्तित्व खो देगा। लेकिन ऐसा कोई विभाजन नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के साथ सह अस्तित्व में है। त्रुटि ये दावा छोड़ देगी कि आत्मा शरीर में है, कि जीवन और बुद्धि पदार्थ में है और ये सामग्री मनुष्य है। ईश्वर मनुष्य का सिद्धांत है और मनुष्य ईश्वर का विचार है, इसलिए मनुष्य ना तो नश्वर है और ना ही भौतिक। इसे जाने, नश्वर और ईमानदारी से मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति की तलाश करें, जो सभी भौतिक स्वर्थ से अप्रासंगिक है। क्रिश्चियन साइंस शरीर में सत्य का सूर्य प्रकाश लाती है, जो स्फूर्तिदायक और शुद्ध करती है। क्रिश्चियन साइंस सत्य के साथ एक परिवर्तनकारी तात्सुत्रुति के रूप में कार्य करती है। ये स्रावों को बदलती है, देह को बाहर निकालती है, ट्यूमर को घोलती है, कठोर मांसपेशियों को आराम देती है, कुशातिग्रस्त हड्डियों को सुधारता में पुनर्शापित करती है। इस विज्ञान का प्रभाव मानव मन को आधार के परिवर्तन के लिए प्रेरित करना है, जिस पर वो दिव्य मन के लिए झुक सकता है। अनुभवों ने इस तथ्य का पक्ष लिया है कि मन शरीर को नियंत्रित करता है, एक उदाहरण में नहीं बल्कि हर उदाहरण में। जब आप कहते हैं मनुष्य का शरीर भौतिक है, मैं पौलुस के साथ कहता हूं, देह से अलग होकर प्रभु से अलग रहना और भी उत्तम समझते हैं। मन की भौतिक धारणा को भौतिकता में छोड़ दो और एक मन है, यहां तक कि भगवान भी इसके लिए मन अपनी समानता बनाता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसने बचपन में अपाच को ठीक करने के लिए ग्राहम प्रणाली को अपनाया था। कई सालों तक उसने केवल रोटी और सब्जियां खाई और पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। उसने भूख और कमजोरी में, लगभग भूखमरी में, कई थका देने वाले साल गुजारे और अंत में मरने का मन बना लिया। डॉक्टरों के कौशल को समाप्त कर दिया, जिन्होंने उसे सूचित किया कि मृत्यु वास्तव में उसका एकमात्र विकल्प था। इस बिंदु पर क्रिश्चियन साइंस ने उसे बचा लिया और अब वो पुरानी शिकायत के अवशेष के बिना पूर्ण स्वास्थ्य में है। भोजन के पास मदद करने या उसे चोट पहुंचाने की शक्ति कम थी, क्योंकि उसने इस तथ्य का लाभ उठाया था कि मन मनुष्य को नियंत्रित करता है और उसे पदार्थ के तथाकथित सुख और दर्द में भी कम विश्वास था। उसे क्या खाना पीना चाहिए, इस बारे में कम विचार करके जीवन की अर्थव्यवस्था के बारे में, पेट के बारे में कम और ईश्वर के बारे में अधिक सलाह देते हुए उसने तेजी से ताकत और मांस प्राप्त किया। उसने सीखा कि पेट का एक रोगी भगवान की छवि और समानता से बहुत दूर था। यदि जानवर का थोड़ा सा मांस खाने से उस पर हावी हो सकता है और समुद्र की मछलियों पर और मवेशियों पर और हवा के परिंदों पर अधिकार होना बहुत दूर था। उसने अंत में निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर ने कभी भी अपाच को नहीं बनाया, जबकि उसकी आज्ञाओं के विपरीत भय, स्वच्छता, शरीर विज्ञान और भौतिकी ने उसे बनाया था। जल्दी या बाद में हमें पता चलेगा कि मनुष्य की परमित क्षमता के भ्रूण को इस भ्रम से मजबूर किया जाता है कि वो आत्मा की बजाय आत्मा के स्थान पर शरीर में रहे। जब रोग के पहले लक्षण दिखाई देते हैं तो दिव्य विज्ञान के साथ सामग्री, इंद्रियों की गवाही का विवाद करें। विचार पर बढ़ने के लिए पाप या बीमारी का कोई दावा नहीं है। इसे एक विश्वास के साथ खारिज कर दें कि ये नाजायज है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर पाप से अधिक बीमारी का लेखक नहीं है। आपके पास पाप या बीमारी की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए उसका कोई कानून नहीं है, लेकिन आपके पास उस आवश्यकता को निकालने और बीमार को ठीक करने के लिए दिव्य इख्तियार है। रोग के उद्वीप या उन्नत चरणों में अंधे और शांत प्रस्तुत करने की बजाय उनके खिलाफ विरोध में खड़े हों। इस विश्वास को समाप्त करें कि संभावना है कि आप एक ही असहनीय दर्द का सामना कर सकते हैं, जिसे मन की शक्तियों द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है, और इस तरह आप शरीर में दर्द के विकास को रोक सकते हैं। भगवान का कोई भी कानून इस परिणाम में बाधा नहीं डालता है। विचार के द्वार पर एक कुली को खड़ा करें, केवल ऐसे निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए जैसा कि आप शारीरिक परिणामों में महसूस करते हैं। आप अपने आप को सामंजस्य पूर्ण रूप से नियंत्रित करेंगे। जब स्थिति मौजूद होती है जिसे आप कहते हैं कि बीमारी को प्रेरित करता है, चाहे वो हवा, व्यायाम, अनुवंशिकता, छूत या दुर्घटना हो, तो अपने कार्यालय को कुली के रूप में प्रदर्शन करें और इन अस्वस्थ कार विचारों और बह को बंद करें। नश्वर मन से अपमानजनक त्रुटियों को बाहर करें, तब शरीर उनसे पीड़ित नहीं हो सकता। दुख या सुख की बात मन से आती है और जैसे चौकीदार अपना पट छोड़ देता है, हम घुसपैठ की धारणा को स्वीकार करते हैं। ये भूल जाते हैं कि ईश्वरीय सहायता के माध्यम से हम इस प्रवेश द्वार को मना कर सकते हैं। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वर पदार्थ अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावना और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के सामर्थ्य में वृद्धि का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। अब मैं मेरी बेकररी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझमें स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।